ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जो उसका पार्ट टू है। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक दशा कैसी थी, ये हम पहले देखेंगे। 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहले मुगल साम्राज्य का पतन, दूसरी क्षेत्रीय उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना, तीसरी अंग्रेजों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों, आर्थिक कठिनाइयों, दरबारी राजनीति, विदेशी मामलों और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से मुगल सत्ता केवल दिल्ली तक सीमित रह गई। मुगल राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप और अहमद शाह अब्दाली ने सत्ता को सफल चुनौती दी। इस काल में भारतीय राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया के आधार पर राज्यों को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, मुगल द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, उदाहरण स्वरूप बंगाल, अवध, हैदराबाद। दूसरी, व्यक्ति और समुदायों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, उदाहरण मराठा, जाट, सिख। और सर्वथा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, उदाहरण स्वरूप मैसूर, केरल और अंबर। मुगल द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारियों द्वारा मुगल सत्ता के कमजोर पड़ते ही बाहरी रूप में अधीनता स्वीकार कर ली गई, किंतु व्यवहारिक रूप से वे स्वतंत्र थे। हालांकि वे समय पर नजराना देते रहते थे, किंतु कई राज्यों ने नजराना देना भी बंद कर दिया था। मुगल सत्ता के विरुद्ध अनेक किसान विद्रोह हुए, साथ ही कई समुदायों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसमें मराठा एक प्रमुख शक्ति थे। उन्होंने दिल्ली के समीपवर्ती इलाकों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। चूनामढ़ और बदन सिंह ने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की दृष्टि से मैसूर एक प्रमुख राज्य था, जिसकी स्थापना हैदर अली द्वारा की गई तथा सुल्तान द्वारा मैसूर को शक्तिशाली बनाया गया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना हुई। उनकी राजनीतिक व्यवस्था में मुगल व्यवस्था के साथ नए परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। मुगल सत्ता कमजोर हुई, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा राज्यों ने स्वीकार की। मुगल द्वारा नियुक्त अधिकारियों का सम्मान किया जाता था। मैसूर को छोड़कर अन्य सभी शासकों द्वारा नवाब की उपाधि, मुगलों की तरह राज्यों की आय का स्रोत भूमिकर, वहीं मराठों का चौथ व सरदेशमुखी। राज्य विस्तार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राज्यों के मध्य संघर्ष, आपसी संघर्ष के कारण सहयोग का अभाव, जिसके कारण आक्रमणकारियों द्वारा पराजित हुए, चाहे वह अहमद शाह अब्दाली हो या अंग्रेज। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत में अंग्रेजों के उपनिवेश की स्थापना से जुड़ी थी। व्यापारिक मुनाफों से परिचालित कंपनी ने अपना राजनीतिक उद्देश्यों को शीघ्रता से स्पष्ट करते हुए प्लासी और बक्सर के युद्धोपरांत स्वयं को एक राजनीतिक शक्ति घोषित किया। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। इतिहासकारों का यह मानना है कि वेलेजली को गवर्नर जनरल बनाना वस्तुतः भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने की दृष्टि से हुआ। अधिपत्य स्थापित करने के साथ ही अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो निम्नलिखित में से देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, नौकरशाही का विकास किया गया और भूमि कर व्यवस्था में भूलभूत परिवर्तन किए गए। आर्थिक दशा। 18वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि व गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में बाजार के लिए उत्पादन होता था। दोनों ही क्षेत्रों में श्रम का भुगतान किया जाता था। इस तरह मुद्रा अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। विदेशी व्यापार भी विकसित था तथा मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक भूमि भी उपलब्ध थी। वास्तव में मुगलकालीन अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी की विकास की संभावनाएं थीं, किंतु उपनिवेशवाद ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों से दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे शहरों का पतन हुआ, किंतु इन्होंने अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। राज्यों के प्रमुख आय का स्रोत कृषि ही थी, किंतु अंग्रेजों ने इस ओर ज्यादा ध्यान दिया। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक भूमि कर कमाकर उसे अपने व्यापार में लगाना था। इस काल में कुछ ऐसे वर्ग थे जिनका जातीय पेशा व्यापार था, उदाहरण मद्रास में चट्टी जाति, गुजरात में जैन, हिंदू और वोहर व्यापारी, राजस्थान के मारवाड़ी, बंगाल के वाड़िक, केरल के सोपा इत्यादि। भारतीय व्यापारियों के पास अपनी पूंजी भी थी, वे अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे व्यापारी किसानों की फसल खरीदते जिससे किसानों की मौद्रिक आय प्राप्त होती तथा राज्य की नगद राजस्व प्राप्त होती। कुछ व्यापार बैंकर का भी काम करते थे, जैसे बंगाल में जगत सेठ। लोग इनसे मुद्रा विनिमय और कर्ज के लिए सहायता लेते थे। अंग्रेजों को जैसे ही राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति हुई, बैंकिंग संबंधी कार्य व्यापारियों से छिन गए। वे व्यापारी जो कभी अंग्रेजों की सामान खरीदकर उपलब्ध कराते थे, उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अंग्रेजी एजेंसी व्यवस्था द्वारा खरीद से समस्त व्यापारी गतिविधियां अंग्रेजों के अधीन हो गईं। भारतीय व्यापारी अधीनस्थ हो गए। 18वीं सदी के प्रारंभिक दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की इकाइयां ग्राम थी, जो स्वावलंबी और स्वाशाही ही नहीं अपितु अपनी आवश्यकता के लिए सभी पदार्थों का उत्पादन कर लेती थी। इनका राज्य से संबंध केवल कर देने तक सीमित ना था। वंश तथा शासकों के परिवर्तन के विपरीत ग्राम समाज निरंतर मंद गति से चलता रहा। एशियाई समाज के उस अपरिवर्तनशील रूप की विशेषता वर्तमान में भी विद्यमान है। गांवों में वस्तु विनिमय की प्रथा थी, जिसके अंतर्गत वे शिल्पकार को सामान की प्राप्ति के बदले अनाज देते थे। वस्तुतः समाज के सभी वर्ग एक दूसरे पर आश्रित होकर एक स्वावलंबी ग्रामीण का सृजन करते थे, जहां बाहरी वस्तुओं की संभावना थी ही नहीं। इस विशेषता के कारण यूरोपवासियों ने कहा कि ये नश्वर संसार में भी अनश्वर है। ये ग्राम्य समाज एक और आर्थिक और सामाजिक दायित्व में मुख्य भूमिका निभाते थे तथा दूसरों को प्रावीणता के लिए उत्तरदायी थे। भारतीय शिल्पकारों ने काफ़ी प्रगति कर ली तथा नगरों में हस्तशिल्प का स्तर बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय वस्तुओं की मांग विश्व के सभी बाजारों में थी। इन वस्तुओं में ढाका, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा सूती कपड़ा, आगरा, गुजरात, लाहौर तथा रेशमी कपड़ा, लाहौर और आगरा की ऊनी शॉल, गलीचे, सोने चांदी के आभूषण इत्यादि। स्थानीय तथा विदेशी व्यापार के वृद्धि के कारण व्यापारिक पूंजी का विकास हुआ तथा बैंकिंग प्रणाली, हुंडिया इत्यादियों का प्रचलन होने लगा। 17वीं सदी में भारतीय व्यापार के विकास से यह दृष्टिगोचर होता है कि इसमें पूंजीवाद के शीघ्र उत्थान के लिए परिस्थितियां विद्यमान थीं, परंतु कुछ प्रतिबंधों के कारण इसका विकास नहीं हो सका, जैसे सामंतवादी वर्ग का प्रसार जो कि कृषकों की बचत का दुरुपयोग करते थे, अभिजात वर्ग की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त करना, लोगों में बचत की भावना का अभाव तथा बचतों के उपयोग की प्रवृत्ति ना होना, राजनीतिक स्थिरता का ना होना, उपरोक्त कारकों के कारण आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक विधि का विकास नहीं हो पाया। इसके साथ ही यूरोपीय कंपनियों के आगमन के फलस्वरूप आर्थिक निष्क्रियता ने बाधा का रूप ले लिया। 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापार और विकसित तथा समृद्ध हुआ, किंतु इसका लाभ यूरोपीय कंपनियों को मिला। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से भारतीय वस्तुओं विशेषकर सूती वस्त्र का आयात प्रभावित हुआ, जिससे भारत को प्राप्त होने वाली विदेशी आय प्रभावित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा धन को निकासी की प्रक्रिया 18वीं सदी से प्रारंभ हुई। ब्रिटिशों ने इंग्लैंड में के लाभ के लिए यहाँ के कारीगरों की उत्पादन प्रक्रिया का दबाव डाला तथा सूती हथकरघा निर्माण से लगे उद्योग धंधों को नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। संक्षेप में कहा यह गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तथा ब्रिटिश व्यापार का स्वरूप प्रतिस्पर्धात्मक से बदलकर एकाधिकार हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक दशा। 18वीं सदी का भारतीय समाज विभिन्न मान्यताओं तथा परंपराओं से बंधा हुआ था। भारतीय समाज में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद कुछ नए वर्गों का जन्म हुआ। इन वर्गों को C.A. Bailey ने तीन भागों में बांटा है। पहला, जो प्राचीन कूली वर्ग ने अपने स्थिति की आर्थिक मजबूत बनाने के लिए जमीन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, वे जमींदार बन गए। मुसलमानों और हिंदू कंपनी के साथ व्यापारिक और वित्तीय गतिविधियों में भागीदारी बन गए और अपनी सामाजिक स्थिति ऊंच की। ग्रामीण स्तर पर जब अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया और भूमि कर देने से असमर्थ जमींदारों की जागीरी नीलाम कर दी गई, तो इसको खरीदने वाले नए जमींदार सामने आए जो प्रायः शहरों में रहते थे। 18वीं शताब्दी में कई परिवार और समुदायों ने सामाजिक स्तर सुधारने में सफलता प्राप्त की। इसमें सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में जड़ता नहीं थी। प्रारंभ में कंपनी से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले भारतीयों को सामूहिक स्तर पर सम्मान प्राप्त था, परंतु कालांतर में शासक और शासित वर्गों के बीच अंतर स्पष्ट होने लगा। अंग्रेज अपनी जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे, जिससे कि भारतीयों ने अपने वैवाहिक और सामाजिक स्तर पर घनिष्ठ संबंध होने की संभावना बहुत ही कम रही। वस्तुतः ऐसा देखा गया कि अंग्रेज द्वारा भारतीयों से विवाह के उपरांत पैदा हुए बच्चे को काफ़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था और अनेक जनजातियों पर आधारित था। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, जादू टोना और अनेक कुरीतियों का बोलबाला था। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी अंधविश्वास का प्रचलन था। इन सबके बावजूद जन संस्कृति सशक्त थी और धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े नहीं होते थे। स्त्रियों का समाज तथा घर में सम्मान था। मालाबार तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर समाज का मुख्यतः पितृप्रधान था। प्रायः स्त्री को समाज में उसका न्यायपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। दहेज प्रथा का प्रचलन था तथा हिंदू और मुसलमानों में स्त्रियां पर्दा करती थीं। बड़े राजवंशों व धनी परिवारों में बहुपत्नी प्रथा काफ़ी व्यापक रूप में थी। विधवा विवाह द्विजों में वर्जित था। बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित थी। भारतीय शिक्षा की प्रकृति सांस्कृतिक थी, ना कि मात्र साक्षरता पर आधारित थी। वर्ण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। हिंदू तथा मुसलमानों दोनों वर्गों में शिक्षा धर्म से जुड़ी हुई थी। संस्कृत शिक्षा के प्रमुख केंद्र नादिया, काशी, तिरहुत और उत्कल थे। फारसी और अरबी उच्चतर अध्ययन संस्थान को मदरसा कहते थे। फारसी अदालतों की भाषा थी, जिसके कारण हिंदू व मुस्लिम दोनों इसको सीखते थे। 18वीं सदी में प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार हो रहा था। हिंदू प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को पाठशाला और मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को भक्तब कहा जाता था। ये संस्था मंदिर या मस्जिद से जुड़े नहीं थे तथा यहाँ पर मुख्यतः पढ़ने लिखने और अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। नैतिक शिक्षा सत्य व ईमानदारी पर बल, माता पिता की आज्ञा मानना और अपने धर्म के प्रति आस्था रखने भी विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल था। शिक्षा वस्तुतः उच्च जातियों में लोकप्रिय था, हालांकि निम्न जाति के लोगों के भी विद्यालय जाने के उदाहरण मिलते हैं। स्त्री शिक्षा की बहुत ही कम महत्व मिला। कला और साहित्य के क्षेत्र में दिल्ली में संरक्षण की अनुपस्थिति के कारण कलाकारों और दस्तकारों को अन्य क्षेत्रीय राज्यों की ओर रुख करना पड़ा। ये नए संरक्षण स्थल वस्तुतः नए स्थापित राज्यों की राजधानियां थी, उदाहरण हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर इत्यादि। आसफ़ुद्दौला ने लखनऊ में सुप्रसिद्ध इमामबाड़ा बनवाया, जिसकी विशेषता है स्तंभों का प्रयोग न करना। सवाई राजा जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, बनारस सहित 5 नगरों में वैद्यशालाओं की स्थापना की। रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में संगमरमर लगवाया तथा उसके ऊपरी हिस्से में तांबा और स्वर्ण पत्र की पट्टी लगवाई। क्षेत्रीय भाषाओं जैसे उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमी, मराठी, तेलुगु और तमिल का श्रेष्ठतम विकास इस काल में हुआ। इस काल में क्षेत्रीय भाषा के प्रसार का प्रमुख कारण था ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करना तथा बाइबल का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना। इसके साथ ही इस काल में यथात्मक शैली की अधिकतर साहित्य लिखा गया। इसके साथ ही ये भाषाएं स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क का सशक्त माध्यम बनी। भाषा के विकास और लेखन शैली पर भक्ति और सूफी साहित्य तथा परंपराओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सिंध में शाह अब्दुल लतीफ, पंजाब में वारिस शाह और दक्षिण में त्यागराज ने अपनी कविताओं में इस भावना को स्पष्ट किया। हीर रांझा केवल एक सांसारिक प्रेम कहानी ही नहीं दर्शाती है अपितु सूफी आत्मरिक्तमा को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही इस सदी की रचनाओं में सामाजिक संकट मुगल साम्राज्य के पतन को भी दर्शाया गया है। उर्दू शायर रसी ने कहा कि मुगलकालीन अभिजात वर्ग इतना अधिक निर्धन हो गया है कि वह मिट्टी के घड़े भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। थैंक यू।